కనక ఋషిదుకూలం చారువర్హవసూలం కమపి నిఖిలసారం నవమి గోపీకుమారం.
రాస పూర్ణిమ హై. రాస పూర్ణిమ, రాస శబ్ద కో సున్కర్ హమ్ లోగ్ ప్రాయ హై జో రాస లీలా హోతీ హై ఉసీ కీ ఓర్ దేఖ్తే హై, దృష్టి వహీ జాతీ హై. యే రాస లీలా హీ ఉసీ కా అనుకరణ హై, ఉస్కో దిఖానే కే లియే హీ హై, ఇస్లియే యే ఆదరణీయ హై. పరంతు వో జో భగవాన్ కా రాస, ఉస్కో థోడా సా సమజ్ లేనా చాహియే. రాస శబ్ద కా మూల్ హై రస్, ఔర్ రస్ హై భగవాన్ కా రూప్, రసో వైసా హై. తో ఏక్ ఐసీ దివ్య క్రీడా హోతీ హై, జిస్ దివ్య క్రీడా మే ఏక్ హీ రస్ అనేక రసో కే రూప్ మే హోకర్ అనంత అనంత రసో కా సమాస్వాదన కర్తా హై. వో ఏక్ హీ రస్ హై, రస్ సమూహ కే రూప్ మే ప్రకట్ హోకర్ స్వయం హీ ఆస్వాద్, స్వయం హీ ఆస్వాదక్ లీలా ధామ్ విభిన్న ఆలంబన్ ఔర్ ఉద్దీపన్ కే రూప్ మే ప్రకట్ హో జాతా హై, ఔర్ వో ఏక్ దివ్య లీలా హోతీ హై, ఉస్కా నామ్ రాస హై. తో రాస్ కా అర్థ హై లీలామయ భగవాన్ కీ లీలా, ఔర్ లీలా వో భగవాన్ కా స్వరూప్. తో రాస్ భగవాన్ కా స్వరూప హీ హై, ఇస్కే సివా ఔర్ కుచ్ నహీ. తో భగవాన్ కీ జో దివ్య లీలా హై రాస్ కీ, యే తో నిత్య చల్తీ రహతీ హై ఔర్ చల్తీ హీ రహేగీ, ఇస్కా కోయి ఔర్ ఛోర్ నహీ. కబ్ సే శురూ హుయీ ఔర్ యే చల్తీ రహేగీ, కోయి బతా నహీ సక్తా. కభీ కభీ కుచ్ బడే ఊంచే ప్రేమీ మహానుభావో కే ప్రేమాకర్షణ సే హమారీ ఇస్ భూమి మే భీ రాస లీలా కా అవతరణ హోతా హై. వో అవతరణ భగవాన్ శ్రీ కృష్ణ కే ప్రాకట్య కే సమయ హువా, ఉసీ కా వర్ణన శ్రీమద్ భాగవత్ మే రాస పంచాధ్యాయీ కే నామ సే హై. పాంచ్ అధ్యాయో మే ఉస్కా వర్ణన హై. ఉస్మే పాంచ్ అధ్యాయో మే సబ్సే పహలే బంశీ ధ్వని హై. బంశీ ధ్వని కో సున్కర్ గోపికాఓ కా అభిసార హై, శ్రీకృష్ణ సే ఉన్కా వార్తాలాప్ హై, దివ్య రమణ హై, రాధాజీ కే సాథ్ శ్రీకృష్ణ కా అంతర్ధాన హై, పునః ప్రాకట్య హై. ఫిర్ గోపియో కే ద్వారా దియే హువే వసనాసన పర్, వసనాసన పర్ భగవాన్ కా విరాజనా హై. గోపియో కే కుచ్ కూట ప్రశ్నో కా, గూఢ ప్రశ్నో కా, ప్రేమ ప్రశ్నో కా ఉత్తర హై. ఫిర్ రాస నృత్య క్రీడా జల కేలి ఔర్ వన విహార. ఇస్ ప్రకార్ సే అంత మే పరీక్షిత్ కే సందేహాన్వితి హోనే పర్ బంద్ కర్ లియా జాతా హై రాస కా వర్ణన. యే బాత్ పహలే సే సమజ్ లేనీ చాహియే, యాద్ రఖనే కీ బాత్ హై. ఇసీలియే ఇస్ రాస పంచాధ్యాయీ మే సబ్సే పహలా శబ్ద ఆతా హై భగవాన్. భగవాన్ అపి తారాత్రి శరదోత్ఫుల్ల మల్లికాః. అది ఏ బాబా తో బోల్తే రహే నహీ తో యే బతాతే కీ శరదోత్ఫుల్ల మల్లికా కా క్యా అర్థ హోతా హై. హమ్ తో జాంతే వాంతే నహీ భలా శరద్ ఋతు మే మల్లికా కైసీ, శరద్ ఋతు మే మల్లికా కహాన్ సే ఫూలీయే. పర్ ఇస్కే జో విచిత్ర భావ హై, విచిత్ర అర్థ హై, యే అనుభవ కీ చీజ్ హై. తో ఏక్ ఇత్నీ బాత్ జాన్ లేనీ చాహియే కీ యే జో కుచ్ హై యే భగవాన్ మే హై, భగవాన్ కా హై. ये जड़ की सत्ता जो होती है ना, जड़ की सत्ता जीव के दृष्टि में होती है. जड़ नहीं तो है नहीं. जड़ की जो सत्ता है ये अज्ञान युक्त हमारी आंखों में है. भगवान की दृष्टि में जड़ की सत्ता नहीं है. तो ये देह है और ये देही है. इस प्रकार का जो भेदभाव है ये प्रकृति के राज्य में है. जड़ राज्य में है। अप्राकृतिक लोग में जहाँ प्रकृति भी चिन्मय है वहाँ सभी कुछ चिन्मय होता है, और तो वहाँ अचित की जो प्रतीति होती है कहीं कहीं वो तो केवल सिद्धविलास अथवा भगवान के लीला की सिद्धि के लिए होती है, अचित वहाँ कुछ है नहीं। तो इसलिए होता क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है ये जड़ राज्य में है, हम जीव है ना, तो जड़ राज्य में हम प्राकृतिक चीजों को देखते हैं, जड़ देखते हैं। तो जब हम कभी किसी अप्राकृत वस्तु का भी विचार करते हैं, जैसे भगवान का दिव्य लीला प्रसंग, भगवान की रास लीला इत्यादि, ये सर्वथा अप्राकृत चिन्मय लीला है। पर हम विचार करते हैं उस समय, हम विचार करते हैं कौन सी बुद्धि से, जो बुद्धि जड़ में प्रविष्ट है, जो जड़ को ही देखती है, तो अपनी जड़राज्य की धारणाओं को, कल्पनाओं को, क्रियाओं को लेकर हम उसी का दिव्य राज्य में आरोप कर लेते हैं, और अपनी सड़ी गली गंदी आंखों से हम वही सड़ी गली गंदी चीजों को, हाड़ मांस के रक्त के शरीर को जिसमें दुष्टा मूत्र भरा है, इसी की कल्पना करते, इसी को देखते हैं, चिन्मय राज्य में हम प्रवेश नहीं करते। इसीलिए ये रास में हम लोग ये स्त्री पुरुषों की लीला की कल्पना करते हैं, पर ये बात ध्यान में रखने की है कि रास जो है ये परम उज्ज्वल दिव्य रस का प्रकाश है। ये जड़ जगत की बात तो दूर रही, हम यहाँ तक कह दें तो अत्युक्ति नहीं कि ज्ञान या विज्ञान रूप जगत में भी ये प्रकट नहीं होता। और इतना ही नहीं, जो साक्षात चिन्मय तत्व है, चिन्मय तत्व में भी इस उज्जवल रस का लेसा भास नहीं रहता, यहाँ तक हम कह सकते हैं। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भाव में कृष्ण प्रेम स्वरूपा, कृष्ण गृहित मानसा जिनका नाम आया है इसमें, उन श्री गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है, और वो गोपी का मधुर हृदय भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए इस रासलीला के यथार्थ रूप को और परम माधुर्य को समझने के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि ये भगवान की दिव्य चिन्मयी लीला है। गोपियां भगवत स्वरूप हैं, वो चिन्मयी हैं, सच्चिदानंदमयी हैं। अब ये साधना भी उन्होंने जड़ शरीर का मानो एक तरह से त्याग कर दिया है। सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग और कैवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष, इनका भी उन्होंने त्याग कर दिया है। इनकी दृष्टि में क्या है, गोपियों की दृष्टि में क्या है, तो बहुत समझने की चीज है साधना की ऊंची से ऊंची। गोपियों की दृष्टि में है केवल चिदानंद स्वरूप प्रेमास्पद श्री कृष्ण, बस उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत आ गया है। श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत गोपियों के हृदय में छलकता रहता है, इसीलिए श्री कृष्ण उनके हृदय के प्रेमामृत का रसा स्वादन करने के लिए लालायित होते हैं, लालायित रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने मन की रचना की, इसीलिए उन्होंने गोपांगनाओं का आवाहन किया, इसीलिए शरद की रात्रि को, रात्रियों को रात्रियां हो गई, उन्होंने सुना और उनको बुलाया। तो यहाँ पर ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर कोई जड़ देह है, यहाँ पर गोपियों को पहचानना चाहिए। आप ये शास्त्रों में आता है, और एक बात छोड़ दी, ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद और अर्जुन, ऐसे ऐसे लोगों ने गोपियों की उपासना करके और गोपी भाव की थोड़ी सी लीला देखने के लिए वरदान प्राप्त किया, और अनुसुया सावित्री इत्यादि देवियां जो हैं महान पतिव्रता, ये गोपियों के चरण धूल की उपासिका है। वो कितना बड़ा, एकमात्र श्री कृष्ण के सिवा कोई पति है ही नहीं, इस बात को देखने वाली परम पतिव्रता तो गोपियां थी, कोई था ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये उससे नीचा भाव, पर इस भाव में भी हम देखें तब हम गोपियों की दिव्य लीला पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने की है कि ये भगवान की लीला है, भगवान सच्चिदानंद घन दिव्य हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, हानि उपादान रहित हैं, सनातन हैं, शुद्ध हैं। इसी प्रकार गोपियां भी भगवान की स्वरूप भूता श्री राधा जी की काया व्यूह रूपा है, ये उनकी अंतरंग शक्तियां हैं, इन दोनों का संबंध भी नित्य और दिव्य है। बस ये भावराज्य की लीला स्थूल शरीर स्थूल मन से परे की है। तो इसलिए जब गोपियों का आवरण भंग हुआ तब इस लीला में लीला के लिए भगवान ने उनको संकेत किया दिव्य रात्रियों का, उसी संकेत के अनुसार भगवान ने इनका आवाहन किया, यहाँ से ही आरंभ होता है। बहुत संक्षेप में दो तीन चार श्लोकों के बाद कह देनी है, अधिक नहीं, और उसे भी बहुत पीछे उतर कर। ये भगवान का मिलन कब होता है, भगवान का मिलन कब होता है, जब और किसी वस्तु की भी कल्पना मन में नहीं रहती और भगवान के मिलन के लिए चित्त अत्यंत आतुर हो जाता है। ये दशा जब होती है और जब भगवान उसको देखते हैं कि अब ये जरा सा इशारा पाते ही, जरा सा संकेत पाते ही सर्वस्व का त्याग तो कर ही चुका है, उस सर्वस्व के त्याग को प्रत्यक्ष करके मेरी ओर आ जाएगा। इस प्रकार की जब स्थिति देखते हैं भगवान, तब भगवान मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, भगवान मुरली बजाते हैं, और वो मुरली की ध्वनि उन्हीं को सुनाई देती है। ये मुरली तो बजी उस समय ब्रज में भगवान ने बजाई, और वो मुरली जिस मुरली की ध्वनि दिव्य लोकों में पहुंच पहुंच कर वहां के देवताओं को भी स्तंभित कर देती है, नचा देती है। उस मुरली की ध्वनि उस दिन, आज के दिन शारदीय रात्रि के दिन और नहीं सुनी, मुरली बजी और मुरली बजी सब जगह बजी, पर उस मुरली की ध्वनि किनके कानों में गई, जो भगवान से मिलने के लिए जिनका हृदय अत्यंत उत्तप्त था, आतुर था, उनके हृदय में उनके कानों में भगवान की मुरली गई। मुरली क्या थी, ये भगवान का आह्वान था, उनकी साधना पूर्ण हो चुकी, भगवान ने अगली रात्रि में उनके साथ विहार करने का प्रेम संकल्प कर लिया, बस अब मुरली बजी। तो मुरली बजी तो क्या हुआ, बड़ी सुंदर भावना, इस बड़ी सुंदर बात लिखी है श्रीमद् भागवत में, मुरली बजी निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम भज श्री कृष्ण गृहित मानसाह आ जगमुरन्योन्य अलक्षितोद्यम क्षेत्र कांतो जबरूल कुंडलाह। ये स्थिति है भगवान के विरही साधक की, बड़ी ऊंची स्थिति। कहते हैं कि मुरली बजी, मुरली का गीत उन्हें सुना, वो गीत कैसा था, आनंद वर्धन था। ये जितने भी संसार में हम प्रकृति की चीज देखते हैं, इसमें कोई अनंग नहीं है, प्रकृति अनंग नहीं है, प्रकृति अंग वाली है, और ये अंग वाली चीज उनके मन में रही नहीं, कोई भी अंग वाली चीज गोपियों के मन में नहीं रही। तो वो जो अनंग है, अनंग कौन है, भगवान है, अनंग कौन है, प्रेम है, और कोई अनंग है ही नहीं। तो ये इस अनंग की, इस प्रेम की वृद्धि करने वाली वो वेणु की ध्वनि इनके कान में पड़ी। किनके कान में पड़ी, एक शब्द बड़ा सुंदर है, कृष्ण गृहित मानसा, जिनके मनों को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था है। गोपियों का मन अपने वश में नहीं, कृष्ण गृहित मानसा, जो कृष्ण गृहित मानसा नहीं होंगे ना, उनको घर के काम में से छुट्टी नहीं मिल सकती। जो कृष्ण गृहित मानस नहीं है वो भगवान के आह्वान को नहीं सुन सकता, वो तो घर में फंसा है, उसको तो घर की पुकार सुनाई पड़ती है चारों तरफ से, घर ही की पुकार, मुरली की पुकार कहाँ सुनेगी। इसलिए मुरली की पुकार ब्रज में गई पर उन्हीं ब्रज बालाओं ने सुना, घर के लोगों ने सुना, वो घर में मन था ना, वो कृष्ण गृहित मानस नहीं थे, वो तो सब के सब घर ही में उनका मानस रम रहा था, घर ही में उनके मानस को पकड़ रखा था। तो ये कैसी थी कृष्ण गृहित मानसा, इनके मन को श्री कृष्ण ने पहले से ही ले रखा था। तो क्या करे आदमी कि मन जो है ना इसको खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे, खुला छोड़ दे। तो हमने तो खुला छोड़ ही रखा है, जहां चाहता हमको ले जाता है, तो ये खुला छोड़ना नहीं है, ये तो किसी में लगा के छोड़ना है, विषयों में लगे हुए मन को खुला छोड़ना हम कहते हैं। कि खुला कहां छूटा, ये तो विषयों से जुड़ा हुआ है, खुला छोड़ने का अर्थ क्या है, विषयों से हटा के खुला छोड़ दे, विषयों से हटा के, विषयों को मन से निकाल के, विषयों से मन को हटा के मन को खुला छोड़ दे, जहां खुला मन हुआ तो भगवान ले जाएंगे। ये बिल्कुल सच्ची बात, भगवान आते हैं पर हमारे मन को खुला नहीं देखते, भगवान आते हैं पर हमारे मन को किसी के द्वारा पकड़ा हुआ देखते हैं, भगवान आते हैं हमारे मन में किसी को बैठा देखते हैं। तो भगवान देखते हैं इसका मन तो खाली नहीं, इसका मन तो खुला नहीं, लौट जाते हैं। तो मन को गोपियों ने खुला छोड़ दिया, खुला से खुला छोड़ दिया, मन को खुला छोड़ दिया, सब चीजों से मन को खोल दिया, मन के जितने बंधन थे संसार के वो त्याग दिए, काट दिए, मदर थे चित देहिका सब। अब क्या हुआ, जब मन इनका ऐसा हो गया जिसमें संसार रहा नहीं, तो भगवान ने आके इसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसको मन को क्या किया, गोपियों के मन को अपने मन में ले गए, और उनके मन में अपने मन को बैठा दिया। ता मन मनस्का का यही अर्थ है, ता मन मनस्का का यही अर्थ है कि गोपियों का अपना मन था नहीं, और उनके मन में श्री कृष्ण का मन आ बैठा, तो उनका मन कहाँ गया, कृष्ण गृहित मानसा। तो गोपी भाव की जब हम बात करें तो ये पर सोच लेना चाहिए कि हमारा मन संसार से मुक्त होकर खाली होकर भगवान के द्वारा पकड़ा जा चुका है कि नहीं, भगवान ने हमारे मन को पकड़ लिया है कि नहीं। अगर नहीं पकड़ा है तो हम गोपी नहीं बन सकते। कृष्ण गृहित मानसा, उस वेणु गीत को जो भगवान ने गाया, अनंग वर्धन गीत था, अनंग प्रेम भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला, उस गीत को सुना उन लोगों ने जिन श्री गोपांगनाओं का मन श्री कृष्ण ने पहले ही ले रखा था, उन बड़ी सुंदरियों ने। तो सुनते ही क्या हुआ, बड़ी बढ़िया बात, लोभी आदमी को कोई धन का अत्यंत लोभी हो और धन की आवश्यकता हो, उसको पता लग जाए कि अमुक जगह पर धन पड़ा है और जाके मिल जाएगा, छूट रहा है तो उसको साथ ही बटेरेगा, फिर वो सलाह नहीं करेगा कि भाई अमुक अमुक आदमी साथ चलो, बटेरना किसी मेले में जाना है, तमाशा देखने जाना, सो नहीं, वो तो धन का लोभी है ना, कि जहां सुनी बात की वहां भागा, सलाह नहीं किसी से बातचीत नहीं, सलाह किसी कभी तुम साथ चलिए नहीं। तो कहते हैं कि भाई सुंदरियां जो थी अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, इन्होंने कहा नहीं हम जा रहे तुम भी चलो। इसका एक कारण और भी आएगा आगे, कहा नहीं, क्योंकि ये तो कृष्ण के ही तो मानसा थी ना, और यहाँ से आया आवाहन तो बिना किसी से कहे सुने ही, और ये चल भी, और चल भी कैसे, धीरे धीरे नहीं, मौज से नहीं, द्रुत गति से दौड़ी दौड़ी, बस अपने आप को रख नहीं सकी, ठहर नहीं सकी, चाल में धीमापन नहीं ला सकी, दौड़ी जितनी दौड़ सकती थी। तो जबलोल कुंडलाहा, ये बताते हैं कि दौड़ने में क्या हुआ कि उनके जो कान के कुंडल रहे वे सब के सब अत्यंत हिलने लगे। ये दौड़ने का चिन्ह बताते हैं, जबलोल कुंडला वो दौड़ी, अर्थात इतने जोर से गई कि उनके कानों के कुंडल हिलने लगे, हिलने लगे। और असल में वही आभूषण है जो भगवान से मिलने के लिए हिलते हैं, क्योंकि जड़ है, पत्थर है, उन गहरे में रखा क्या है। तो गई और पहुंच गई आजगमुह यत्र सैकांतः, जहां पर वो कांत कांत स्वामी अपना प्रियतम, प्रियतम एक भगवान ही है भला, और संसार में कोई प्रियतम उत्तम कांतवान तो है नहीं, ये सारी हम लोगों ने न मालूम किस किस को कांत बना रखा है। प्रिय कांत नहीं होते हैं, पुरुषों को भी कांत होते हैं, हम सब लोगों को न मालूम कितने कांत हैं, पता है नहीं है। तो वे असल कांत के पास जा पहुंची, तो बोले जा पहुंची, एक एक गई, अलग अलग गई, तो घर के काम काज को संभाल के सहेज के गई होंगी ना, प्रश्न हुआ ये, सहेज के गई होंगी कि ऐसे आप कैसे भाग गई, तो कैसे भाग गई। अरे बोले सुना नहीं, तो कृष्ण गृहित मानसा थी, मुरली की ध्वनि सुनते ही भागी। तो भागे क्यों, क्यों भागे हो, समुत्सुका, समुत्सुका श्री कृष्ण से मिलने के लिए परम उत्सुक थी। ये साधक का रूप होता है, ये उनके विशेषण है, किसी गृहित मानसा समुत्सुका, ये बताते हैं उनकी स्थिति को, समुत्सुका ये इतनी उत्सुक थी भगवान से मिलने के लिए कि जहाँ मिलने की बात किसी रूप में भी आई, इनको और कुछ सूझा ये नहीं, तो क्या किया, बताते हैं काचित दुहंत्या दोहन हित्वा, कुछ गोपियां गा दू रही, गा दू रही, हर हाथ में दू रही, नीचे बच्चन रखा है, दू रही और मुर्री की ध्वनि कान में आई, कृष्ण गृहित मानसा समुत्सुका, वो जो थी वो बस दोहन हित्वा दुहना छोड़ करके भागी। कहाँ भागी, जिधर से वो वेणुनाद आया था, अभी यू हो उस वेणुनाद की ओर लक्ष्य करके वो भागी, तो दूहने वालों की दशा, और कुछ कुछ गोपियां दूह लाई थी, उन्होंने दूध को चूल्हे पर रख दिया था औटाने के लिए। अब जहां यह आह्वान आया, अब औटावे कौन, तो देखिए दूध दूसरे भागी, ऐसे चूल्हे पर रखे ही दौड़ी, चाहे फंजा जल जा, ये जब तक जगत की स्मृति रहती है ना महाराज, तब तक भगवान का आह्वान नहीं सुनते हम, जब भगवान का आह्वान उसने सुना, सुनते जगत की स्मृति को भूल गए। साधना का ऊंचा स्तर ये, जगत को याद रखते हुए हम जो भगवान की ओर जाते हैं, ये भगवान की ओर जाते नहीं, उस जगत में रमते हैं भगवान का नाम लेकर, उसी जगत में रमते, उसी की स्मृति रखते ना, तो जहाँ भगवान का आह्वान कान में सुनाई दिया, जगत भूल गया, तो दूध भूल गई बहती, और दूध को भूल गई चूल्हे पर। अरे भाई और कुछ कर बर रही थी, बोले एक तो हलवा बना रही थी, संयावन कुछ गोपियां जो थी वो हलवा बना रही थी अपने घर वालों के लिए, तो हलवा बना रही थी, हलवा तो उतार देती, बोले उतार देती कौन, उतारने का होश रहता तब न हूँ, बिना उतारे भाग जल जल जाए हलवा। ये साधक की स्थिति होती है, जब भगवान का आवाहन सुनता है साधक, उस समय जगत की ओर देखता नहीं। बुद्ध ने नहीं देखा, जो प्रेम के साधक रहे थे उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा, जरा सा एक बार श्री पुत्रों की ओर देखा फिर मैं मोड़ दिया भाग गया। इस प्रकार से हलवे को उतारे बिना चूल्हे पर छोड़े भाग गई। बोले ये तो अपना अपना काम था, कोई दूसरे का कोई काम करती हूँ तो बोले ये भी हुआ। परिवेश तट हितवा परोश रही थी, घर वालों को भोजन परोस रही थी। बोला की तो सभ्यता होती कि परोसना का काम पूरा करके जाती। बोले मैं पूरा करे कौन, कृष्ण गृहित मानसा समुत्सुका, पूरा करे कौन, वो तो दूसरा काम पूरा करने के लिए चली छोड़ गई। बोले भाई खैर ये तो कोई बात नहीं, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं तो कोई कोई बच्चों को दूध पिला रही थी तो सुशील पय पायंत शिशुओं को दूध पिलाती हुई भी छोड़ के भाग गई। शिशु रोते रहे और काचित पतिन शिशु संत्या कुछ अपने पतियों की सेवा कर रहे थे वही भाग गए। अब इसका उल्टा अर्थ कोई ले लेगा ना तो वो तो भूल में जाएगा। ये लौकिक अर्थ नहीं, यहाँ पर ये पहले की बात याद रखने के, ये परम उच्च साधना की बात है जहाँ जगत नहीं रहता। तो इसलिए आगे इसमें आई ये बात, कभी राजपंचा जाइए सुनेंगे तो मालूम होगा। पतियों की बात याद जलाइए जो साधारण स्त्रियों के लिए होती है। भगवान ने कहा जाओ सेवा करो और कुछ बोले अपने खा रही थी, इतना तो स्वार्थ होता है ये खाता आदमी तो बोले खा के चले। असनंत्य भोजनम अपास्य, कई भोजन करती हुई थाली पड़ी रही वहीं पर। और बोले महाराज और क्या क्या हुआ, अन्य लिम्पंत्य कमिजंत्य, कुछ जो थी वो अंगराग लगा रही थी और कुछ उपटन लगा के नहा रही थी। उपटन लगा के नहाना था, उपटन लग ही रह गया, उपटन उपटन कहीं लगा कहीं नहीं लगा, ऐसे ही लगा रह गया और छोड़ चली। और कुछ काजल डाल रही थी नेत्रों में, का लोचने अंजंत्य, एक आंख में काजल पड़ा दूसरे का रह गया ऐसे छूट गया है। तो काचित व्यत्यस्त वस्त्राभरण कृष्णांतकम ययोः है, पहन रही थी चोली और सोचा कि ओढ़नी है सिर पर डाल दिया, उल्टे कपड़े पहन लिए और हाथ का गहना पैर में पहन लिया कान का गहना उंगली में डाल लिया, पता ही नहीं ना ये गहना है कि क्या है। तो बस व्यक्तित्व वस्त्राभरण कृष्णांतकम ययोः, उल्टे सीधे गहने कपड़े पहन करके विचित्र श्रृंगार हो गया। गोविंदा भजात्माना, गोविंदा भजात्माना, गोविंद ने इनके अंतकरण को हरण कर लिया था। ये कभी सौभाग्य है कि हमारे मन को भी भगवान हरण कर लें, हरण कर लें चुरा लें, तो वे क्यों चुरा लें। बस यहाँ यही एक बात है समझने की, हम ये कामना करें, हम इच्छा करें कि हमारा मन गोविंद ले जाए, तो गोविंद लेने को तैयार। बोले ले तो जाएंगे, पर भाई कब ले जाओगे। बोले जब तुम मन को हमारे लिए खाली करके रखोगे तब, इसमें भरा हुआ बोझा हो कौन उठा के ले जाए उसको। हम मन को हम तो करके ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे तुम्हारे मन को, पर तुम अपने मन को जगत से तो खाली करो, इसमें जो कुछ कूड़ा करके तो भर रखा है इसको निकाल दो, तो गोविंद जो है वो कहते हैं हम हर के ले जाएंगे। तो गोपियों ने सब कुछ निकाल दिया मन से, इसलिए उनके मन को भगवान हरण करके ले गए। गोविंद प्रतात्मान कृष्ण गृहित मानसा, ये इनके नाम है, गोपियों के विशेषण है। इस रास पंचाध्यायी में इसी इसी परम त्याग की, परम ऊंची जो समर्पण की लीला है उनमें आप ही नहीं, दूसरे उसरे कोई नहीं है, ये खाली लोगों को दिखाने के लिए देव बने हैं, एक ही कृष्ण ही अपने आप लीला करते हैं। पर ये दिख रहा है इसमें कि कितना ऊंचे से ऊंचा त्याग होना चाहिए भगवान की ओर जाना चाहता है उस साधक में। इसमें उल्टी बात है, लोग देखेंगे देखते हैं इसमें भोग ही भोग है, तो इसमें केवल त्याग ही त्याग है, इसमें कहीं भोग है ही नहीं, इसी त्याग से आरंभ होता है ये। और त्याग में इसकी पराकाष्ठा है, त्याग के सिवा जब सारा का सारा त्याग होकर श्री कृष्ण के सुख में जाकर के विलीन हो गया, उनका जीवन, उनकी क्रिया, उनके सारे काम, उनकी कुल चेष्टाएं इसी श्री कृष्ण सुख में जाकर विलीन हो गई। इस प्रकार का ये त्याग में जीवन तो तीन बात करनी है, गोपी बनना हो कोई तो सारी लगानी मंगाना है, तीन बात करनी है। कैसे किसी को गोपी बनना हो तो हम सब बन सकते हैं गोपी, तीन बात कौन सी, अपने मन से जगत को निकाल देना एक बात, दूसरी बात भगवान को देने के लिए मन को तैयार कर देना, उसे कहना कि ले जाओ, और तीसरी बात किसी भी कारण से किसी भी हेतु को लेकर कहीं पर भी अटकने की भावना न करना। अटके नहीं, भगवान को मन देने के लिए तैयार कर ले और मन को जगत से खाली कर ले। जहां तक मन में हमारे विषय भरे हैं, जहां तक विषयों को निकाल करके भी अगर हम ज्ञान विज्ञान की ओर जाते हैं तो भगवान को देना नहीं चाहते मन, वहां भी भगवान नहीं लेते, भगवान नहीं लेते मन, मन अमन हो जाता है, मन मिट जाता है, मर जाता है, पर मन भगवान का नहीं होता। और तीसरी बात जो सबके लिए आवश्यक है, अटकना, अटकना, तो ये अटकना जो है ये गोपी में नहीं है, ये न अटकने की ही है, सारी के सारे समय की ये जो बात है कहीं अटकी नहीं, न गहने ने अटकाया, न कपड़े ने अटकाया, न भोजन ने अटकाया, न घर वालों ने अटकाया, एक को अटकाया वो पहले पहुंच गई, आगे आ जाती है वो अंतर्गृह आकाशित गोपना, ये किसी को रोका तो पहले पहुंच गई, प्राणों को देकर पहुंच गई। तो मतलब कहने का ये है कि आज की जो सर्व पूर्णिमा की रात्रि है, ये ऊंची बातों को छोड़ दें, इतनी बात कि ये साधन के लिए, साधना के लिए बड़े ऊंचे आदर्श को बतलाने वाली रात्रि है। इस दिन साधना की परिपूर्णता का जो परम फल होता है ये प्राप्त किया है श्री गोपांगनाओं ने। और कैसे किया, बड़ी विलक्षण बात इसमें यह है, इस प्रसंग में जो पहले कही थी ऊंची बात, श्री कृष्ण से लाभ उठाने के लिए, श्री कृष्ण से सुख प्राप्त करने के लिए गोपिका नहीं गई, उनके हृदय में, उन्होंने अपने हृदय में उस विशुद्ध प्रेमामृत को भर रखा था, उस प्रेमामृत की आकांक्षा भगवान को हो गई, उन निष्काम में, परम अकाम में, पूर्ण काम में उस पवित्र मधुर प्रेम रसास्वादन की इच्छा उत्पन्न हो गई, तो भगवान को सुख देने गई, सुख लेने नहीं। ये सार है, ये सार है। जहाँ तक हम भगवान के द्वारा सुख चाहते हैं, वहाँ तक हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम भोगों के दास हैं, सुख के दास हैं। और जहाँ हम भगवान को सुख देना चाहते हैं, एक प्रेमी जगत में ऐसा कोई है नहीं, बड़े बड़े भक्त भी भगवान से सुख चाहते हैं, भाई समीप में रहे हम आपके, आपके लोक को प्राप्त कर लें, सारे के सामीप सारी सारी पी प्राप्त कर लें, दर्शन दे दो हमको, ये भी ये कहते हैं दर्शन वर्शन अगर न देने से तुमको सुख होता हो तो बाबा तो दर्शन मत दो, नहीं चलो, भोग की तो बात ही नहीं, तुम्हारे दर्शन भी यदि तुम्हें सुख करने हो तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल तुम्हारा सुख। इस प्रकार भगवान को सुख देने वाले, भगवान को देने के लिए पैदा होते, केवल प्रेमी बाकी सब लेने के लिए। जिज्ञासी साधक जो है मोक्ष, वो भी मोक्ष चाहता, महाराज हमको मोक्ष दे दो, छुटकारा मिल जाए बंधन से, है सकामियों की तो बात ही क्या है, और भोग वाले तो अत्यंत वो तो हम लोग तो वो तो मदद के कीड़े जो भोग चाहते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं। तो ये भगवान को देते, तो गोपियां ये जो गई यहाँ पर, ये भगवान को देने के लिए, अब भगवान को देकर उनको सुख मिलेगा। ये है जब भगवान को दिया, भगवान को सुखी देखा तो अपने परम सुख, और इनको परम सुखी देखा तो भगवान को परम सुख। एक दूसरे को सुखी बनाकर सुखी होना इसी का नाम रास है, ये रास में तो चलता है। इस रास पूर्णिमा जो आज की है, ये त्याग की पराकाष्ठा का रूप बताने वाली है, साधक का रूप बताने वाली है। साधक हमने तो साधक लग रही है, बाधक है सब, जो भोगों में रहे बाधक, जो भोग में सहे वो साधक, ये तो ही बात है। भोगों में रहे बाधक, अपने आप को बाधा देता है अपने आप, तो सारे भोगों से हटकर, सारे भोगों का परित्याग करके भगवान के पवित्र आवाहन पर गोपियां अपने आप को ले गई यहाँ भगवान के श्री चरणारविंद में, और वहां ले जा करके और भगवान को सुखदान दिया, सुखदान दिया। ये रास का स्वरूप, ये तो रास की बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी रास की ऐसी ऐसी बातें हैं जो बातें कभी चुकती ही नहीं, और जिनमें ये तो ऐसा भाव आज जो हुआ है, जो केवल कहा जा सकता है वैसा भाव है। इसमें बहुत बहुत ऊंचे दूसरे भाव हैं, जिन भावों के लिए न तो समय है, न अवकाश है, न हम जानते हैं। तो इसलिए इतनी बात अपने जानकारी अपने लिए होनी चाहिए, वो ये है कि भगवान के लिए त्याग करें, विषय भोग का त्याग करें, संसार के आसक्ति का ममता का त्याग करें, सारी आसक्ति सारी ममता भगवान में जा करके हमारी लग जाए। ये इतना हम ज्योति भाव से ले लें, इतना हम रास से ले लें, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए। फिर रास मंडल में तो कहीं भगवान दे जाएंगे, वो तो कहीं उनकी इच्छा होगी या श्री राधा रानी की कहीं कृपा होगी, वो किसी सखी मंजरी मंजरी को कर देंगे अपने लिए, तो वो कहीं ले जाएगी। हमारे पुरुषार्थ से हम नहीं जा सकते, हमारा पुरुषार्थ जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ प्रेम का पाठ आरंभ होता है। जहाँ चारों पुरुषार्थों की सीमा इधर रह जाती है, वहाँ प्रेम की सीमा का प्रारंभ होता है। ये गोपी प्रेम है, और रास तो उसका एक प्रत्यक्ष पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण तो प्रेम किसी कह ही नहीं सकते, कहीं पूर्ण है ही नहीं, यहाँ तो साया का साया या पूर्ण रहता है, जितना मिला उतना ही थोड़ा। तो इस प्रेम राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए ये गोपियों का उदाहरण कि सब जगत को भूल कर, सारे जगत को त्याग कर, केवल श्री कृष्ण गृहित मानसा होकर वे अपने श्री कृष्ण के चरण अपने को समर्पित कर देती हैं, कृष्ण को सुखी बनाने के लिए। ये गोपी भाव है। हरिओम तत्व।
पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है रास पूर्णिमा, और इसका कैसेट संख्या है 197।